दोस्तों, कुछ ही दिनों में हम भारतीय परंपरा में शिव तत्व इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं। शिव तत्व, शिव तत्व का तात्पर्य है शिव का सिद्धांत। शिव तत्व को समझे बिना मानव जीवन का जगत के अन्य पक्षों से संबंध समझा ही नहीं जा सकता। भगवान शिव अनेक नामों और रूपों का सुंदर समन्वय है, जैसे शंकर, शंभु, महेश। शिव तत्व हमें अत्यंत सुंदर माध्यम से भगवान शिव के विरोधाभासी गुणों को स्पष्ट और उजागर करता है। शिव संहारक भी हैं और उत्पन्न करता भी। वे एक ही समय अज्ञानी भी हैं और ज्ञान के भंडार भी। वे चतुर भी हैं और दानी भी। उनके संगी साथी भूत, प्रेत, सांप इत्यादि हैं, लेकिन वे ऋषियों, संतों तथा देवताओं के भी आराध्य पुरुष हैं। शिव तत्व कल्याण का दर्शन है। इसी तत्व के मर्म को समझकर हम समाज में सहचर्य, एकात्मकता और सद्गुणों का प्रचार कर सकते हैं। शिव वही तत्व है जो समस्त प्राणियों का विश्राम स्थल है। ऋषियों, मुनियों ने अनेक चमत्कारिक अन्वेषण किए हैं, पर शिव तत्व की खोज अद्भुत थी, जो ब्रह्मांड के समस्त रहस्य खोलते हुए जीवन मरण के चक्र से मुक्त करती थी। तत्व क्या है? पूरा ब्रह्मांड तत्वों से ही बना है, और जो भी ब्रह्मांड में है वो शरीर में भी है। इस बात को श्री कृष्ण, अष्टावक्र, शंकराचार्य तथा अनेक ऋषियों ने समझाने का प्रयास किया है। तत्व जागृत किए बिना ईश्वर के दर्शन संभव ही नहीं। शिव तत्व जागृत होगा तो शिव सामने आएंगे, शक्ति तत्व जागृत होगा तो महाकाली के दर्शन संभव होंगे। शिव ही दाता है, शिव ही भोक्ता है। जो दिखाई पड़ रहा है वो सब शिव ही है। शिव का अर्थ है जिसे सब चाहते हैं, और सब चाहते हैं अखंड आनंद को। शिव का अर्थ है आनंद। शिव का अर्थ है परम मंगल, परम कल्याण। शिव तत्व से तात्पर्य विध्वंस या क्रोध से भी है। सृजन और विध्वंस अनंत श्रृंखला की कड़ियां हैं, जो बारी बारी से घटित होती हैं। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक, भौतिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में ये सत्य है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट के बाद हुई। विस्फोट से सृजन हुआ, न कि विनाश। जब सृष्टि काल के उपद्रवों से जीव व्याकुल हो जाता है, तब उसको दीर्घ सुषुप्ति में विश्राम के लिए भगवान शिव सर्व श्रृंगार करके प्रलयावस्था व्यक्त करते हैं। शिव तत्व एक ही है, उसी के ब्रह्मा, विष्णु, गणपति, दुर्गा, सूर्य आदि भिन्न भिन्न नाम और रूप हैं। वेद के अनुसार सत, असत जो कुछ भी है सब ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। इस प्रकार वेद ने मानव मात्र के लिए बहुत ही सुगम साधन प्रस्तुत कर दिया है। जब हम समस्त जड़ चेतन को भगवन में देखते हैं, तब सबका सम्मान करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अपमान करने वाले का भी हमको सम्मान ही करना होगा, क्योंकि वो भी शिव तत्व से भिन्न नहीं है। इस प्रकार यदि वर्तमान समय में, जबकि विश्व में प्रेम, सद्भाव एवं शांति का अभाव सा होता दिख रहा है, तथा मनुष्य में मनुष्यत्व समाप्त होता जा रहा है, यदि हम शिव तत्व के मर्म को समझकर समाज में सहचर्य, एकात्मकता तथा सद्गुणों का प्रचार करें, तो एक नवीन विश्व का निर्माण संभव है, जहां सुख, शांति, आनंद और संतोष होगा, मानव मात्र का कल्याण होगा। इन्हीं सब बातों को सोचकर हमने भारतीय परंपरा में शिव तत्व इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर हमने जिन विदुषी विभूतियों को आमंत्रित किया है, उनके अतिरिक्त इस संवाद के लिए किसी और नाम को शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। आप दोनों ने ही हमारे आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया, इस बात के लिए हम उनके दिल से आभारी हैं। आइए दोस्तों, इनसे आपका परिचय करवाती हूँ। मिलते हैं आदरणीय मृदुल कीर्ति जी से, जो हमारे आर्ष ग्रंथों को लोक भाषा में लाने की अथक साधना में तल्लीन है। आर्ष वैदिक ऋषियों के प्रणीत ग्रंथों सांख्य योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, सामवेद, ईशादि नौ उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथों की क्लिष्टता, गूढ़ अर्थ गर्भिता, मर्म गर्भिता को काव्य की सरसता में विभिन्न छंदों के माधुर्य में काव्यानुवादित करने का साहसिक कार्य आपने किया है। आपने पतंजलि योग दर्शन का अनुवाद करके इतिहास रचा है, जो दुनिया में अब तक का पहला अनुवाद है। गृहस्थ रहते हुए 18 महाग्रंथों के काव्य अनुवाद के बारे में कोई सहजता से शायद सोच भी न सके, परंतु आपने इस कठिन कार्य को इस तरह से किया कि हम सबको यही लगता है कि उन्होंने बहुत आसानी से कर लिया होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझसे जो शब्द कहे उनसे आप भी समझ सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो कितनी बड़ी उपलब्धि है। उनका कहना है कि ये ना सोचना कि सब कुछ बहुत सरल था। उड़ान भरने का अर्थ है कि मेरे पंखों में पत्थर बंधे थे। दोस्तों, कितने कम शब्दों में आपने अपने इतने लंबे और कठिन सफर को बयां कर दिया है। मैंने आज तक मृदुल कीर्ति जी को किसी भी मंच से अपने बारे में, अपने कठिन सफर के बारे में कभी भी कुछ भी कहते हुए नहीं सुना। इसका कारण पूछने पर उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा उसे सुनकर मैं भाव विभोर हो गई और उनके बारे में मेरे मन में और भी अधिक आदर भाव बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य एकांतिक नहीं आत्यंतिक है। मैं एकांतिक दुख और पीर की बात नहीं करती, मैं अपनी बात नहीं करती, मैं वो बात करती हूं जो त्रिकाल में तुम्हारी पीड़ा को हरे। और सच में मृदुल कीर्ति जी ने जो साहित्य सृजन किया है उसे पढ़कर सुनकर परमानंद की प्राप्ति होती है, इसीलिए वे सिर्फ और सिर्फ अपने लेखन कार्य में तल्लीन रहती हैं। मृदुल कीर्ति जी उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता आदि ग्रंथों के उदाहरण देते हुए कहती हैं कि हमारी सारी ज्ञान परंपरा में चिंतन की एक निरंतरता है। जहां उपनिषद हमें त्याग करते हुए भोग की प्रवृत्ति में लिप्त होने का संदेश देते हैं, वही संदेश श्रीमद् भगवद गीता में पहुंचते पहुंचते निष्काम काम यानी कर्म योग में बदल जाता है। इन आर्ष ग्रंथों जिनका आपने काव्यानुवाद किया वो कार्य बहुत कठिन था, बहुत क्लिष्ट विधा होती है ये। मृदुल कीर्ति जी का कहना है कि इसमें आपका अपना कुछ नहीं रहता, इसके लिए ऋषियों के वैचारिक शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, उनके कहे उनके लिखे हुए को आत्मसात करना, फिर संस्कृत भाषा के छंदों का मंथन और उसे हिंदी भाषा के सीमित मीटर में लाना, ये सब बहुत कठिन है। उन्होंने इस बात को कितने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। कौन देता लेखनी कर में थमा, कौन फिर जाता हृदय तल में समा, कौन कर देता है उन्मन चित्त को संसार से, कौन तज निसारता मुझको मिलाता सार से, कौन भूमा तक मेरे मन मूल को है ले चला, कौन गहकर बांह जंग से तोड़ता है श्रृंखला। मृदुल कीर्ति जी का कहना है कि जगत से जब श्रृंखला टूटती है तब ऐसे काव्य की रचना होती है। आपने अपने साहित्य सृजन में ऐसा बहुत कुछ कर दिया है जो देखने पर असंभव ही लगता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दिव्य चेतना प्रवाहित होती गई और आप ये कार्य करती चली गई। ऐसा ही कुछ मुझे तब लगा जब मैंने ये जाना कि आपने ब्रज भाषा में गीता लिखी। इस भाषा में कोई भी औपचारिक शिक्षा लिए बिना आपने ये काम कैसे किया? इसके जवाब में आपका कहना है कि ये सच है कि मैं कभी ब्रज के आसपास भी नहीं गई, मुझे और कुछ नहीं रुचता, बस कर्तव्य, कर्म और ग्रंथों में डूबे रहना, यही मेरा संसार है। जब तक आप मन, वचन और कर्म से शुद्ध नहीं होते, तब तक वासुदेव आपके हृदय में रुकेंगे ही नहीं। फिर आप ग्रंथों का अनुवाद कैसे कर सकते हैं? अंतर मन की शुद्धता और अंतर बोध का दिव्यता से जुड़ाव आवश्यक है। पतंजलि योग में भी चित्त वृत्ति निरोध की बात है, इसके बिना ज्ञान बाहर नहीं आता है। ऐसी विदुषी साहित्य साधिका, जी हाँ, ऐसे व्यक्तित्व साहित्य साधना ही करते हैं और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। उनके सानिध्य में कुछ देर रहकर ही हम कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इन ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में ही मृदुल कीर्ति जी से शिव तत्व के विषय में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाती हूँ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित बहुचर्चित व लोकप्रिय उपन्यास दर्दपुर की लेखिका सुविख्यात साहित्यकार डॉक्टर क्षमा कौल जी से। जहाँ तक मैंने उनके साहित्य को पढ़ा है और उनकी कृतियों पर विद्वान वक्ताओं के वक्तव्यों को सुना है, निसंकोच ये कह सकती हूँ कि कश्मीरी विस्थापितों पर लिखे गए अभी तक के सबसे प्रामाणिक दस्तावेज आपकी रचनाओं में पढ़ने को मिलते हैं। डॉक्टर क्षमा कौल जी कश्मीर शैव दर्शन की गहन अध्येता हैं। आप आचार्य अभिनव गुप्त के तंत्रालोक के 8 खंडों की अधिकारी विद्वान हैं। आप शीर्ष कवित्री भी हैं। आपका कविता संग्रह बादलों में आग निर्वासन साहित्य पर लिखा गया एक ऐसा संग्रह है जिसे हम कश्मीरी पंडितों के शोषण और उत्पीड़न की एक खुली किताब कह सकते हैं। उनके साहित्य को जब आप पढ़ते हैं तो एक अलग ही भाव मन में उत्पन्न होता है, क्योंकि वे एक साहित्यकार से अधिक संवेदनशील एवं भावुक इंसान हैं। वे दर्द पर ऐसे बात करती हैं कि वो दर्द सभी को अपना प्रतीत होने लगता है। वे स्वयं इस दर्द में मानो डूब जाती हैं। उनका खुद का भोगा हुआ दर्द घनीभूत पीड़ा से ओतप्रोत होकर उनके साहित्य में छलक उठा है। उनका एक और कविता संग्रह उदास लोग इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है। क्षमा कौल जी का एक वक्तव्य आपके हृदय की सच्चाई, आपके अच्छे संकल्पों को उद्घाटित करता है। आपका कहना है कि मैंने अश्रुधारा से लिखा है कश्मीरी पंडितों का सच, स्याही से नहीं। उनके एक एक शब्द का भाव उनके हृदय से निकला प्रतीत होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव तत्व कल्याण का दर्शन है और शिव तत्व भगवान शिव के विरोधाभासी गुणों को स्पष्ट और उजागर भी करता है। जैसे भगवान शिव संहारक भी हैं और उत्पन्न करता भी, उसी प्रकार क्षमा कौल जी के लेखन में हमें विरोधाभासी गुण देखने को मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपने शिव तत्व के मर्म को समझकर ही अपना लेखन आरंभ किया, जो आज तक अनवरत जारी है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि शिव का अर्थ तो है आनंद, परम मंगल, परम कल्याण, तो क्षमा जी का साहित्य इस परिभाषा को कहां पूरा करता है? पर जब हम गहनता से आपके साहित्य का अध्ययन अनुशीलन करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि उनका साहित्य पूरी तरह से इस बात को सिद्ध करता है, क्योंकि उसमें सच्चाई है, हृदय की गहराई से लिखा गया एक एक शब्द है। डॉक्टर क्षमा कौल जी ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, जिससे उनके लिखने का प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है। लोगों को मेरा रूप उग्र लगता है, पर वो उग्र नहीं है, सच है, और सच प्रकाशमयी होता है। सत्य अपने आप में ज्वाला लिए होता है। जो उस ज्वाला को बुझाने के लिए बैठे हैं, वही उसे उग्र कहते हैं। सच चमकदार होता है। जिसमें उसे सहने की ताब नहीं है तो उसे तो वो उग्र लगता है। मैं सिर्फ अपना सच बोलती हूँ जो मैंने अपने मन पर झेला है। मैं वही लिखती हूँ, वही बोलती हूँ। सच की ऊष्मा से ही तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। देखा आपने, शायद अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सच जब सामने आता है तो उसका कोई भी रूप हो वो पवित्र ही होता है। और बिल्कुल सच कहा क्षमा जी आपने। हमारा ये प्रयास होगा कि इस सच को सहने की ताब लाएं हम अपने अंदर और आगे बढ़ने का प्रयास करें। बीते दशकों या शताब्दियों में जो भी हुआ उसे अब ना दोहराया जाए, और क्षमा जी जैसे साहित्यकारों से प्रेरणा लेते हुए हम ये शिव संकल्प करें कि कश्मीर जो कि हम सबका है, वहाँ के सभी लोग हमारे अपने हैं, उन्हें हम अपने साथ लेते हुए चलें। तभी ये कार्यक्रम जो कि हम शिव तत्व पर कर रहे हैं उसकी सार्थकता होगी। अंत में एक बात कहना चाहूंगी कि आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजनों का उल्लेख किया है, जिसमें से चतुर्थ प्रयोजन है शिवेतर क्षतय, जिसका अर्थ है कि काव्य सृजन अथवा उसका पठन एवं श्रवण अमंगल नाश में भी समर्थ है। हमारी आज की दोनों विदुषी साहित्यकार इस प्रयोजन को आधार मानकर ही मानव लेखन करती हैं, क्योंकि मृदुल कीर्ति जी के लिए जैसा मैंने शुरू में बोला कि उनका कहना है कि मेरा लक्ष्य एकांतिक नहीं आत्यंतिक है, और उनका प्रयास ये होता है कि ऐसा साहित्य रचा जाए जो त्रिकाल में हर प्राणी की पीड़ा को हरे, सबका कल्याण करे। इसीलिए आपको इन आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, उनका चिंतन मनन करना पसंद है, और गूढ़ संस्कृत निष्ठ भाषा में होने के कारण वे आम जन के लिए सहज ग्राह्य नहीं है। तभी आपने इन ग्रंथों का अनुवाद करके इन्हें सर्वग्राह्य बना दिया। कितना बड़ा मंगल का, कल्याण का कार्य आपने किया। और इसी प्रकार क्षमा कौल जी, जिनका सबसे प्रिय विषय ही है शैव दर्शन, उन्होंने भी अपने साहित्य सृजन से मंगल की, कल्याण की ही बात इस तरह से कहनी चाहिए है, और सच को स्पष्टता से उद्घाटित किया है, जिससे सबक लेकर हम आगे की पीढ़ियों के मंगल, उनके कल्याण का शिव संकल्प लें। शैव दर्शन की अध्येता क्षमा जी शिव से इतर अमंगल की बात तो कर ही नहीं सकती। इन दोनों विदुषी साहित्यकारों के लिए हम सभी के दिल में बहुत सम्मान है। आप जैसे व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति का, हमारी सनातन परंपरा का सम्मान है। जब मैं ये सोचती हूँ कि इन्हें कैसे सम्मानित करूं तो कुछ भी समझ नहीं आता। मैं तो बस चंद शब्दों से ही आपको सम्मानित करने का प्रयास भर कर सकती हूँ, क्योंकि आप तो सम्मान के सम्मान हैं। आपको सम्मानित करूं संभव नहीं। इस पूरे संवाद को आप चुभन पॉडकास्ट और चुभन यूट्यूब चैनल पर अति शीघ्र सुनेंगे।